व्याख्या भाग प्रथम अंक साधारणो यमुभयो प्रणय स्मरस्य तप्तेन तप्तमयसा घटना योग्यम विक्रमोर्वशीयम। राजा पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के समीप एकांत पुष्प कानन शुक्ल पक्ष की रात नटी और सूत्रधार चांदनी में प्रकृति की शोभा का पान कर रहे हैं। कविता का आरंभ पेज नंबर 20 सूत्रधार। नीचे पृथ्वी पर वसंत की कुसुम विभा छाई है, ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में। खुली नीलिमा पर विकीर्ण तारेयों दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे जो चांदी के। या प्रशांत निस्सीम जलधि में जैसे चरण चरण पर नील वारिको फोड़ ज्योति के द्वीप निकल आए हो। शब्दार्थ कुसुम विभा यानी फूलों की सुंदरता, निर्मेघ यानी बादलों से रहित, नीलिमा यानी नीला आकाश, विकिरण यानी बिखरे हुए, दीप रहे हैं यानी चमक रहे हैं, चीर यानी वस्त्र, प्रशांत यानी शांत, निस्सीम जलधि यानी अनंत सागर, वारी यानी जल। व्याख्या। राजा पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के पास एकांत फूलों के बाग से शुक्ल पक्ष की रात में सूत्रधार और नटी प्रकृति की अनंत शोभा का आनंद ले रहे हैं। सूत्रधार उसी चांदनी रात की शोभा का वर्णन करता हुआ नटी से कह रहा है, हे नटी, नीचे पृथ्वी पर वसंत ऋतु के फूलों की शोभा छाई हुई है, ऊपर बादल रहित आकाश में द्वादशी का चंद्रमा चमक रहा है, मानो नीले वस्त्र पर चांदी के बूटे चमक रहे हों। या स्थान स्थान पर अनंत और शांत सागर के नीले जल को फोड़कर ज्योति के द्वीप निकल आए हों। विशेष उत्प्रेक्षाता संदेह अलंकार। नटी, इन द्वीपों के बीच चंद्रमा मंद मंद चलता है, मंद मंद चलती है नीचे वायु शांत मधुबन की, मद विह्वल कामना प्रेम की मानो अलसा इसी, कुसुम कुसुम पर विरम मंद मधुगति में घूम रहा हो रही हो। शब्दार्थ श्रांत यानी थकी हुई, मदविह्वल यानी नशे से व्याकुल, विरम यानी ठहर कर। व्याख्या। सूत्रधार ने आकाश के तारों को ज्योति के द्वीप बताया, उसे सुनकर नटी उत्तर देती है, इन द्वीप जैसे बिखरे हुए तारों के बीच चंद्रमा धीरे धीरे चलता है, साथ ही पृथ्वी पर मधुवन की थकी हवा भी धीरे धीरे चल रही है। यह हवा ऐसी प्रतीत होती है मानो नशे से व्याकुल प्रेम की कामना अलसाकर और प्रत्येक फूल पर ठहर ठहर कर मंद और सुंदर गति से घूम रही हो। विशेष उत्प्रेक्षा तथा पुनरुक्ति अलंकार। सूत्रधार, सारी देह समेट निबिड़ आलिंगन में भरने को, गगन खोल कर बांह विशुद्ध वसुधा पर झुका हुआ है। शब्दार्थ निबिड़ यानी गहरा, विशुद्ध यानी मदोन्मत्त, वसुधा यानी पृथ्वी। आकाश अपनी बाहें खोलकर और अपनी सारी देह को समेटकर मदोन्मत्त पृथ्वी को गहरे आलिंगन में भरने के लिए झुका हुआ है। पेज नंबर 21 नटी। सुख की सुगंभीर वेला मादकता की धारा में समाधिस्थ संसार अचेतन बहता सा लगता है। शब्दार्थ वेला यानी समय, समाधिस्थ यानी समाधि में डूबा हुआ, अचेतन यानी निर्जीव। व्याख्या। यह समाधि में डूबा हुआ निर्जीव संसार सुख के इस अत्यंत गंभीर समय में मादकता की धारा में बहता हुआ सा दिखाई दे रहा है। सूत्रधार, स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगतीयों दमक रही है, सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में, शांति शांति सब ओर मंजुमानो चंद्रिका मुकुर में, प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। शब्दार्थ कौमुदी यानी चांदनी, प्रशांत यानी शांत, जगती यानी संसार, दर्पण यानी शीशा, मंजू यानी सुंदर, चंद्रिका मुकुर यानी चांदनी रूपी शीशा। व्याख्या। स्वच्छ चांदनी से संसार इस प्रकार चमक रहा है मानो वह अपना सच्चा स्वरूप छोड़कर किसी शीशे में समा गया हो, अर्थात उसका स्वरूप भी दर्पणमय हो गया हो। चारों ओर शांति ही फैली हुई है मानो प्रकृति सुंदर चांदनी रूपी शीशे में अपनी शोभा को देखकर स्वयं को भूल गई हो, आत्मविस्मृता हो बैठी हो। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार। मूल किताब से। ऊपर आकाश में रचनाओं और नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती है, बहुत सी अप्सराएं एक साथ नीचे उतर रही हैं। तब नटी कहती है, शांति शांति सब ओर, किंतु यह कणन कणन स्वन कैसा, अतल व्योम उर्मे एक ऐसे नूपुर झनक रहे हैं, उगी कौन सी विभा, इंदु की किरणें लगी लजाने, ज्योत्सना पर यह कौन अपर ज्योत्सना छाई जाती है, कल कल करती हुई सलिल सी गाती धूम मचाती, अंबर से एक कौन कनक प्रतिमाएं उतर रही हैं, उड़ी आ रही छूट कुसुम वल्लियां कल्प कानन से, या देवों की वीणा की रागिनियां भटक गई हैं, उतर रही हैं ए नूतन पंक्तियां किसी कविता की, नई अर्चियों सी समाधि के झिलमिल अंधियाले में, या वसंत के सपनों की तस्वीरें घूम रही हैं तारों भरे गगन में, फूलों भरी धरा के भ्रम से। शब्दार्थ, स्वन स्वर, व्योम उर आकाश का हृदय, विभा ज्योति, इंदु यानी चंद्रमा, ज्योत्सना यानी चांदनी, अपर यानी दूसरी, सलिल सी यानी पानी सी नदी सी, अंबर यानी आकाश, कनक प्रतिमाएं यानी सोने की मूर्तियां, कुसुम वल्लियां यानी फूलों की बेलें, कल्प कानन यानी नंदन वन, अर्चियों सी यानी किरणों सी, धरा यानी पृथ्वी। व्याख्या, जब सूत्रधार और नटी प्रकृति की अनंत सुषमा का पान कर रहे थे और उनका वर्णन कर रहे थे, तभी आकाश से कुछ रचनाओं करधनियों और नुपुरों की ध्वनि सुनाई दी, साथ ही आसमान से बहुत सी अप्सराएं भी उतरती हुई दिखाई दी। उन्हीं अप्सराओं का वर्णन करते हुए नटी सूत्रधार से कह रही है, यद्यपि सब ओर पूर्ण रूप से शांति छाई है, किंतु यह कैसा कणन कणन शब्द सुनाई दे रहा है, इस असीम आकाश के हृदय में कैसे नूपुर बज रहे हैं, चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने के लिए कौन सी ज्योति उत्पन्न हुई है, और इस चांदनी पर यह दूसरी छाई हुई चांदनी कौन है, नदी के प्रवाह के समान कल कल शब्दों को करती हुई धूम मचाती हुई आकाश से उतरने वाली ये सोने की मूर्तियां कौन है, ये नंदनवन से छूटकर फूलों की लताएं उड़ी चली जा रही हैं, या देवताओं की वीणा पर थिरकने वाली रागिनियां भटक कर इधर उधर घूम रही हैं, या ये किसी नवीन कविता की पंक्तियां उतर रही हैं, या समाधि के झिलमिलाते अंधकार में ये नई किरणें फूट रही हैं, या ये तारों भरे आकाश में फूलों भरी पृथ्वी के भ्रम से वसंत के स्वप्नों की तस्वीरें घूम रही हैं। विशेष, उपमा, रूपक और संदेह अलंकार। सूत्रधार, लो पृथ्वी पर आ पहुंची ए सुषमाएं अंबर की, उतरे हो ज्यों गुच्छ गीत गाने वाले फूलों के, पद्मक्षेपों में बल खाती है भंगिमा लहर की, सजल कंठ से गीत हंसी से फूल झरे जाते हैं, तन पर भींगे हुए वसन है किरणों की जाली के, पुष्प रेणु भूषित सबके आननियों दमक रहे हैं, कुसुम बन गई हो जैसे चांदनियां सिमट सिमट कर। शब्दार्थ, सुषमाएं अंबर की यानी आकाश की शोभा, गुच्छ यानी समूह, पद्मक्षेपों में यानी पैरों के रखने में, भंगिमा यानी कुटिलता, वसन यानी वस्त्र, पुष्प रेणु भूषित यानी फूलों की धूल से सज्जित, आनन यानी मुख। व्याख्या, आसमान से उतरती हुई अप्सराओं का वर्णन नटी से करता हुआ सूत्रधार कहता है कि यह देखो आकाश की शोभा पृथ्वी पर आ पहुंची है। इनका आकाश से उतरना ऐसा ज्ञात होता है जैसे गीत गाने वाले फूलों के समूह उतर आए हों। उनके पैर रखने में उनकी देह यष्टि इस प्रकार बल खाती है जैसे लहरों की कुटिलता हो। उनके सजल कंठों से गीत निकल रहे हैं और उनकी हंसी इस प्रकार है जैसे फूल झड़ रहे हों। उनके शरीरों पर किरणों की जाली के भीगे हुए वस्त्र हैं। फूलों की धूल से सजे हुए उनके मुख इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चांदनियां सिमट सिमट कर फूल बन गई हों। विशेष, उपमा और रूपक अलंकार। पेज नंबर 22, नटी। फूलों की सखियां हैं या विधु की प्रेयसियां हैं? शब्दार्थ, विधु चंद्रमा, प्रेयसियां यानी प्रियतमा। व्याख्या, ये या तो फूलों की सखियां हैं या चंद्रमा की प्रियतमा है। सूत्रधार, नहीं चंद्रिका नहीं, न तो कुसुमों की सहचरियां हैं, ये जो शशधर के प्रकाश में फूलों पर उतरी हैं, मन मोहिनी अभुक्त प्रेम की जीवित प्रतिमाएं हैं। देवों की रणक्लांति मदिर नयनों से हरने वाली स्वर्गलोक की अवसरियां कामना काम के मन की। शब्दार्थ चंद्रिका चांदनी, शशधर चंद्रमा, अभुक्त यानी जिसका उपभोग नहीं किया गया है, प्रतिमाएं यानी मूर्तियां, रणक्लांति यानी युद्ध के द्वारा हुई थकान, मदिर यानी नशीले, काम यानी कामदेव। व्याख्या आकाश से उतरने वाली अप्सराएं न तो चंद्रमा की चांदनी है न फूलों की सहेलियां हैं, बल्कि ये मन को मोहित करने वाली न उपभोग किए हुए प्रेम की जीवित मूर्तियां हैं। ये देवों की रण के द्वारा हुई थकान को अपने नशीले नयनों से हरण करने वाली स्वर्गलोक की अप्सराएं और कामदेव के मन की कामनाएं हैं। विशेष उल्लेख और अनुप्रास अलंकार। नटी पर सुरपुर को छोड़ आज ये भूपर क्यों आई है। शब्दार्थ सुरपुर यानी स्वर्गलोक, भूपर यानी पृथ्वी पर। व्याख्या लेकिन यह बताओ कि ये किस लिए स्वर्गलोक को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतरी है। सूत्रधार यों ही किरणों के तारों पर चढ़ी हुई क्रीड़ा में इधर उधर घूमते कभी भूपर भी आ जाती हैं, या संभव है कुछ कारण भी हो इनके आने का, क्योंकि मर्त तो अमर लोक को पूर्ण मान बैठा है। पर कहते हैं स्वर्ग लोक भी सम्यक पूर्ण नहीं है, पृथ्वी पर है चाह प्रेम की स्पर्श मुक्त करने की, गगन रूप को बाहों में भरने को अकुलाता है। गगन भूमि दोनों अभाव से पूरित हैं, दोनों के अलग अलग हैं प्रश्न और हैं अलग अलग पीड़ाएं। हम चाहते तोड़कर बंधन उड़ता मुक्त पवन में, उड़ना मुक्त पवन में कभी कभी देवता देह धरने को अकुलाते हैं। एक स्वाद है त्रिदिव लोक में एक स्वाद वसुधा पर, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन यह कहना बड़ा कठिन है। जो कामना खींच कर नर को सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। किंतु सुने भी तो ये परियां बातें क्या करती है। शब्दार्थ क्रीड़ा यानी खेल, मर्त यानी मृत्युलोक भूलोक, अपर लोक यानी देवताओं का लोक अर्थात स्वर्गलोक, सम्यक यानी अच्छी तरह, स्पर्श मुक्त यानी स्पर्श से मुक्त करना अर्थात उसे सूक्ष्म बनाना, गगन यानी आकाश यहाँ स्वर्गलोक से तात्पर्य है, पूरित हैं यानी भरे हुए हैं, अकुलाते हैं यानी व्याकुल होते हैं, त्रिदेव लोक यानी स्वर्गलोक, अंबर वालों को यानी स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को। व्याख्या जब नटी ने यह पूछा कि अप्सराएं पृथ्वी पर क्यों उतर आई हैं, तो इसका उत्तर सूत्रधार इन शब्दों में देता है। ये अप्सराएं बिना किसी प्रयोजन के खेलती हुई किरणों के तार पर चढ़कर यूं ही इस पृथ्वी पर उतर आई हैं, क्योंकि ये इधर उधर घूमते हुए कभी कभी पृथ्वी पर आ जाती हैं। या हो सकता है कि इनका पृथ्वी पर आने का कोई विशेष कारण हो, क्योंकि भूलोक इस धरती के निवासी स्वर्ग को पूर्ण मान बैठे हैं, इसलिए उनकी धारणा है कि स्वर्ग के वासी किसी विशेष प्रयोजन के वशीभूत होकर इस धरती पर उतरते हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की यह इच्छा है कि वे प्रेम को स्पर्श से मुक्त कर दें अर्थात प्रेम के मांसल रूप का परित्याग करके उसे सूक्ष्म बना दें। किंतु इसके विपरीत स्वर्गलोक के वासी मांसल प्रेम के पुजारी हैं और सदैव रूप को अपनी बाहों में भरने के लिए अकुलाते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि स्वर्ग और भूलोक दोनों ही अभावों से भरे हुए हैं, दोनों के अलग अलग प्रश्न हैं, समस्याएं हैं और दोनों की पीड़ाएं भी अलग अलग हैं। हम भूलोक के निवासियों की यह इच्छा है कि हम सांसारिक बंधनों को तोड़कर मुक्त पवन में विचरण करें, किंतु देवता कभी कभी सांसारिक बंधनों में बंधने के लिए मनुष्य देह धारण करने के लिए व्याकुल रहते हैं। स्वर्गलोक और भूलोक दोनों के स्वाद भिन्न भिन्न हैं, किंतु यह कहना बहुत कठिन है कि इनमें किसका स्वाद श्रेष्ठ है। जो मनुष्य को खींचकर स्वर्ग को ले जाती है, वही स्वर्ग के निवासियों को पृथ्वी पर खींच लाती है। लेकिन छोड़ो इन बातों को, आओ सुने ये परियां आपस में क्या बातचीत कर रही हैं। कोष्ठक में नटी और सूत्रधार वृक्ष की छाया में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। अप्सराएं पृथ्वी पर उतरती हैं तथा फूल हरियाली और झरनों के पास घूमकर गाती और आनंद मनाती हैं। परियों का संवेत गान। फूलों की नाव बहाओ री यह रात रुपहली आई, फूटी सुधा सलिल की धारा डूबा नभ का कूल किनारा, सजल चांदनी की सुमंद लहरों में तैर नहाओरी, यह रात रुपहली आई, यह रात रुपहली आई। मही सुप्त निश्चेत गगन है, आलिंगन में मौन मगन है, ऐसे में नभ से अशंक अवनी पर आओ जाओ री, यह रात रुपहली आई, यह रात रुपहली आई। मुदित चांद की अलकें चूमो, तारों की गलियों में घूमो, झूलो गगन हिंडोरे पर किरणों के तार बढ़ाओ री, यह रात रुपहली आई, फूलों की नाव बहाओ री, यह रात रुपहली आई। शब्दार्थ। सुधा सलिल यानी अमृत रूपी नदी, कूल यानी किनारा, सुमंद यानी मंद मंद बहकर आनंद लेने वाली, मही यानी पृथ्वी, निश्चेत यानी चेतना रहित सूना, मगन यानी मग्न डूबा हुआ, अशंक यानी निडर, अवनी यानी पृथ्वी, मुदित यानी प्रसन्न पूर्ण रूप से खिला हुआ, अलके यानी केश। आकाश से उतरकर व्याख्या में है, आकाश से उतरकर परियां सामूहिक रूप से गीत गाती हुई कहती हैं कि हे सखियो, यह रुपहली रात आई है, अतः फूलों की नाव बहाओ। इस रात अमृत रूपी नदी की धारा फूटकर बह निकली है, जिसमें नव का किनारा डूब गया है, इसलिए सजल चांदनी की मंदी मंदी हवा मंद मंद बहकर आनंद देने वाली लहरों में तैर कर नहाओ, और यह रुपहली रात आई है। परियां संवेद स्वर में गाती हुई कहती हैं कि पृथ्वी सोई हुई है, अर्थात शांत है, आकाश सूना तथा गंभीर है, लेकिन उस चुपचाप पृथ्वी को अपने आलिंगन में लिए हुए आनंद में डूबा हुआ है। हे सखियो, ऐसे वातावरण में आकाश से उतरकर तथा निडर बनकर पृथ्वी पर उतरो, क्योंकि आज रुपहली रात आई है। आसमान से उतरी हुई परियां समवेत स्वर में गा रही हैं कि हे सखियो, पूर्ण रूप से खिले हुए चांद के केशों को चूमो और तारों की गतियों में घूमकर आनंद प्राप्त करो, गगन रूपी हिंडोरे पर चढ़कर फूलों और किरणों के तार बढ़ाओ, क्योंकि आज रुपहली रात आई है। सहजन्या। धुली चांदनी में शोभा मिट्टी की भी जगती है, कभी कभी यह धरती भी कितनी सुंदर लगती है, जी करता है यही रहें हम फूलों में बस जाएं। शब्दार्थ। धूलि यानी स्वच्छ, धरती यानी भूलोक। व्याख्या। भूलोक के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करती हुई सहजन्या अपनी अन्य सखियों से कहती है कि स्वच्छ चांदनी में पृथ्वी बहुत अधिक शोभा युक्त बन जाती है, कभी कभी यह भूलोक भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। मेरा तो मन यह करता है कि हम सभी इस भूलोक पर रहें और इसमें खिलने वाले फूलों में बस जाएं। रंभा। दूर दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है, जी करता है इन शीतल बूंदों में खूब नहाए। शब्दार्थ। शबनम यानी ओस। व्याख्या। दूर दूर तक दूबों की हरियाली फैली हुई है और इस हरियाली पर पड़ी हुई ओस की बूंदें जाली के समान दिखाई पड़ रही हैं। मेरा तो मन यह करता है कि हम शीतल बूंदों में जी भर कर स्नान करें। मेनका। पेज नंबर 24 है। आज शाम से ही हमको भीतर से हरी हरी हैं, लगता है आकंठ गीत के जल से भरी भरी हैं, जी करता है फूलों को प्राणों का गीत सुनाएं। शब्दार्थ। हरी हरी है यानी बहुत प्रसन्न है, आकंठ यानी कंठ तक पूरी तरह। व्याख्या। आज शाम से ही हम अपने मन में बहुत बहुत प्रसन्न हैं, ऐसा ज्ञात होता है कि हम पूरी तरह से गीत के जल में भर गई हैं, अर्थात हमारे मन में अनेक भाव उमड़ रहे हैं। मेरा तो मन यह कहता है करता है कि इन खिले हुए फूलों को प्राणों का गीत सुनाएं, अर्थात इनके साथ घुल मिलकर गीत गाएं। संवेद गान। हम गीतों के प्राण सघन, छूम छनन छन छूम छनन, बजा व्योम वीणा के तार, भरती हम नीली झंकार, सिहर सिहर उठता त्रिभुवन, छूम छनन छन छूम छनन, सपनों की सुषमा रंगीन, कल्पित कलित कल्पना पर उड्डीन, हम फिरती हैं भवन भवन, छूम छनन छन छूम छनन, हम अभुक्त आनंद हिलोर, भिंगो भूमि अंबर के छोर, बरसाती फिरती रसकन, छूम छनन छन छूम छनन। शब्दार्थ। सघन यानी गहरे, व्योम वीणा यानी आकाश रूपी वीणा, त्रिभुवन यानी तीनों लोक, सुषमा यानी शोभा, कलित यानी सुंदर, उड्डीन यानी उड़ती हुई, अभुक्त यानी जिनका भोग नहीं किया गया है, रसकन यानी आनंद के कण। व्याख्या। सब परियां सामूहिक रूप से गीत गाती हुई कहती हैं कि यह गीतों के गहरे प्राण हैं, अर्थात हाव भाव और रूप आदि से ही गीतों का जन्म होता है। हम आकाश रूपी वीणा के तार बजाकर नीली झंकार भरती हैं जिसमें तीनों लोक थिरक उठते हैं। हम स्वप्नों की रंगीन शोभा पर और सुंदर कल्पना पर उड़ती हुई भवन भवन में अर्थात प्रत्येक लोक में फिरा करती हैं। हम आनंद की वे हिलोरे हैं जिनका भोग नहीं किया गया है। हम आकाश और पृथ्वी के छोरों को भिगोकर आनंद के कण बरसाती हुई फिरती हैं। रंभा। बिछा हुआ है जाल रश्मिका यही मग्न सोती है, मही मग्न सोती है, अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। शब्दार्थ। रश्मि यानी किरण, मही यानी पृथ्वी, मृत्यु यानी मिट्टी धरती। व्याख्या। किरणों का जाल बिछा हुआ है जिस पर पृथ्वी आनंद में डूब कर सो रही है। इस प्रकार की शोभा से युक्त धरती को देखकर स्वर्ग के निवासियों को भी उसकी शोभा से ईर्ष्या होती है। पेज नंबर 25। मेनका। कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। शब्दार्थ। धरती यानी धरती पर रहने वाले लोग, गगन यानी स्वर्ग में रहने वाले लोग। व्याख्या। हे रंभा, क्या तेरे मन में ही यह प्रश्न उठता है कि धरती पर रहने वाले लोगों में तथा स्वर्ग में रहने वाले लोगों में क्या अंतर है, इनमें क्या भेद है। रंभा। प्रश्न उठे या नहीं किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है, मर्त लोक मरने वाला है पर सुर लोक अमर है। अमित स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है, मर्त लोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। शब्दार्थ। मर्तलोक यानी भूलोक, सुरलोक यानी स्वर्गलोक, स्निग्ध यानी सुंदर, निर्धूम, शिखासी यानी बिना धुएं की लौ के समान। व्याख्या। स्वर्गलोक अमर्तलोक में क्या अंतर है, इस प्रश्न का उत्तर देती हुई रंभा कहती है कि चाहे यह प्रश्न मेरे मन में उठे या न उठे किंतु इन दोनों का एक अंतर तो स्पष्ट ही है, और वह अंतर यह है कि भूलोक के निवासी मरने वाले हैं जबकि स्वर्गलोक के निवासी अमर होते हैं। देवताओं का शरीर तो अमित सुंदर और बिना धुएं की लौ के समान चमकने वाला होता है, इसके विपरीत भूलोक में रहने वाले लोगों के शरीर की सुंदरता तो क्षण भर की ही माया है, अर्थात उनका सौंदर्य क्षणभंगुर होता है। विशेष उपमा अलंकार। मेनका। पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को, भू को जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को। हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं, स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से, रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय शुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तवराह नहीं मिलती है, उठती जो वेदना यहाँ खुलकर न कभी खिलती है। किंतु मर्त जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है, रुके गंध तक वहां प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए, रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे यह स्वत्व न पा सकते हैं, गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। क्या है यह अमृत समीरों सा सौरभ पीना है, मन में धूम समेत शांति से युग युग तक जीना है। पर सोचो तो मर्त मनुज कितना मधुरस पीता है, दो दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मन शांति सारी है, क्षण भर ही उन्मत्त तरंग पर चिरता बलिहारी है। शब्दार्थ। अंबर को यानी स्वर्ग में रहने वाले लोगों को, व्यंजनों का यानी सुंदर भोजनों का, रसना यानी जीव, स्वर माधुरी यानी संगीत की मधुरता, श्रवण यानी कान, अनिर्वचनीय यानी इसका वर्णन न किया जा सके, शुधा यानी भूख, स्वत्व यानी अधिकार, समीरों सा यानी पवनों के समान, सौरभ यानी सुगंधि, धूम यानी धुआं, मलिन यानी तुच्छ, उन्मद यानी नशीली, तरंग यानी लहर, चिरता यानी अमरता। व्याख्या। मर्त्यलोक स्वर्गलोक से हीन है। रंभा के इस कथन का उत्तर देती हुई मेनका कहती है किरंभा, यह सच है कि भूलोक के निवासी मरने वाले हैं, नश्वर हैं, किंतु तुम नश्वरता की श्रेष्ठता को भूल रही हो। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को जो आनंद आसानी से मिल जाता है, वह स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हम स्वर्ग के वासी इतने विवश हैं कि केवल गंध पीकर ही रह जाते हैं। कहा जाता है कि देवता भोजन नहीं करते और स्वादिष्ट भोजनों का आनंद कभी भी अपनी जीव से नहीं ले पाते। हम केवल कानों से ही संगीत की मधुरता का पान करके तृप्त हो जाते हैं और सौंदर्य का उपभोग या तो केवल मन से करते हैं या तृष्णा भरे नयनों से। लेकिन सौंदर्य को देखकर जब हमारे मन में आवेगों का ज्वर सा आ जाता है तो हमारा जीवन उस भूख से व्याकुल हो उठता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब उस पीड़न से बचने के लिए हमें कोई राह नहीं मिलती। हमारे हृदय में प्रेम की जो वेदना उठती है उसका स्वर्ग में खुलकर पोषण नहीं किया जा सकता। किंतु इन भूलोक के निवासियों पर हमारे जैसा कोई बंधन नहीं है और इनका प्रेम केवल गंध तथा सूक्ष्म विचारों तक ही सीमित रह सके ऐसा भी इन पर कोई बंधन नहीं है। अर्थात भूलोक के वासी खुलकर प्रेम कर सकते हैं और मांसल रूप से उसका उपभोग कर सकते हैं। आदमी आदमी ही रहे या देवता बन जाए, वह केवल गंध का ही सेवन करे अथवा आगे बढ़कर फूलों को गले लगा ले, यह बात मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। केवल देवताओं को यह अधिकार नहीं है कि वे मनुष्य बन जाएं और न गंधों की सीमा से ही आगे बढ़ सकते हैं। यह सच है कि देवता अमर होते हैं, किंतु उनका यह अमरत्व क्या है? केवल हवाओं की तरह सुगंधों का पान करना और हमारे मन में धुएं को समेट कर, अपने मन को महसूस कर, बाहरी शांति धारण कर युगों तक जीवित रहना। लेकिन वह सोचो कि नश्वर मनुष्य कितनी अधिक मात्रा में मधुरस पीता है। भले ही उसका जीवन दो दिन का ही सही, क्षणभंगुर ही सही, लेकिन अपने जीवन के इस अल्प अवधि में भी वह धधक धधक कर अत्यंत उत्साह और आवेगों को संजो कर जीवित रहता है। मनुष्य के जीवन के इन धधकते हुए आवेगों के सामने देवताओं के जीवन की सारी शांति तुच्छ है। उनके जीवन की क्षणभंगुर नशीली लहर में देवताओं के अमृत्व को न्यौछावर करती हूँ। कहने का भाव यह है कि मनुष्यत्व देवत्व से बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ है, विशेष रूपक और उपमा अलंकार।